ओम शांति। तो आज जब हम शांति स्तंभ पर बैठे थे शाम को हम सब, तो कैसा लग रहा था? हाँ, बस हमें भी यही फीलिंग आ रही थी जैसे कि परमधाम नीचे आ चुका है। इतनी सारी ब्राह्मण आत्माएं एक साथ मिलकर जब योग कर रहे थे, इतना साइलेंस का वातावरण, इतनी पवित्रता, इतना स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट था। अगर कोई साइंटिस्ट आ जाता तो ज़रूर कहता कि विश्व में सबसे स्ट्रॉन्ग अगर वाइब्रेशन कहीं है तो यहाँ है। और ऐसा फील हो रहा था कि परमधाम ही नीचे आ गया है। तो इतनी पवित्रता का अनुभव किया उस एक घंटे। तो आज हम संडे की अव्यक मुरली रिवाइज करेंगे। तो टाइटल है मुरली का, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। 24/3/1982 की ये मुरली है। तो बाबा आज किसे देख रहे हैं? बाबा किसे देख रहे हैं आज? पावन बच्चों को। तो बाबा ने कहा आज बाबा अपने पावन बच्चों को देख रहे हैं। बाबा चेक कर रहे हैं सबका पोता मेल कि कितने हद तक हमने पवित्रता को अपने जीवन में धारण किया है। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही पवित्रता है। और पवित्रता के लिए बाबा क्या क्या कहता है? पवित्रता ही बाप, वो तो आज की मुरली में कहा, पवित्रता ही रॉयल्टी है, पवित्रता ही फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन का, पवित्रता ही श्वास है ब्राह्मण जीवन का, पवित्रता ही पब्लिसिटी है, पवित्रता ही ब्यूटी है, पवित्रता ही और क्या है, सुख शांति की जननी है, पर्सनैलिटी है, पवित्रता ही पर्सनैलिटी है। तो कितनी सारी चीजें बाबा पवित्रता के बारे में कहता है। तो आज बाबा हमसे पूछ रहा है कि पवित्रता अपने जीवन में धारण किया है, इसका यंत्र क्या है, कैसे मालूम पड़ सकता है कि पवित्रता हमारे जीवन में है? तो बाबा ने क्या उत्तर दिया? सुख शांति की जननी आप कहते हो कि पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो जहाँ सुख और शांति है वहीं पवित्रता है। तो बाबा ने कहा कि पहले शांति होनी चाहिए, अगर शांति नहीं है तो हलचल होगी। तो जहाँ शांति है वहाँ सुख है और वहीं पवित्रता है। और नहीं तो क्या होगा? क्वेश्चन होंगे, क्यों, क्या, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, बाबा ने ऐसे कहा। तो फिर एकाग्रता की शक्ति नहीं आएगी, बाबा ने कहा। तो आज बाबा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो है पवित्रता। पवित्रता हमारे जीवन का फाउंडेशन है। तो जैसे कि बाबा हमेशा ब्रह्मचारी के बारे में बात करते हैं और संपूर्ण पवित्रता, ब्रह्मचारी पवित्रता का एक हिस्सा है और वो एक पहला कदम है पवित्रता की ओर। तो जैसे कि पवित्रता अगर ब्रह्मचारी अगर फाउंडेशन है तो पवित्रता भवन है। देखा गया है ऋषि मुनि बहुत सारे साध्वी ये सब पवित्र रहते हैं, ये सब ब्रह्मचारी रहते हैं, लेकिन पवित्रता की साधना इनको नहीं मालूम क्योंकि इन लोगों को आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो बाबा ने ऐसे बहुत सारी मुरली चलाई है जहाँ पे पवित्रता के बारे में कहा है। जैसे कल की मुरली थी, बाबा ने कहा ना कि विकार में जाते हैं अगर मुंह काला कर लेते हैं और फिर छिपाते हैं तो और काला मुंह होता है। और बाबा ने प्रश्न उत्तर में क्या कहा था? उत्तर था ये, किसी के नाम रूप में क्या वर्ड फंसना थोड़ी बोला बाबा ने, लट्टू। बाबा ने कहा नहीं लड्डू नहीं लट्टू। तो बाबा ने क्या कहा कि नाम रूप में लट्टू होते हैं और फिर बाप का भी नाम बदनाम करते और अपना नाम भी बदनाम करते। और सन्यासी लोगों के लिए क्या कहा? सन्यासी क्या करते? सन्यासी दूसरों को कहते हैं कि आप साल में एक बार या महीने में एक बार जा सकते हो काम विकार में, लेकिन बाबा ने कहा काम महाशत्रु है। हमेशा बाबा ये वाक्य कहते काम महाशत्रु है। और बाबा कौन सी दृष्टि रखने कहता है हम सबको? भाई बहन की दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि। अगर भाई बहन की दृष्टि है तो विकार आने के चांसेस बहुत कम है। और बाबा ने फिर ऐसे साकार मूल्य में बहुत सारे पॉइंट्स बोले, जैसे लास्ट वीक एक और पॉइंट था, बाबा ने कहा कि बाबा को पवित्रता की मदद चाहिए आपसे, है ना। और कई बार ऐसे पॉइंट्स आते बाबा की अव्यक्त मूल्यों में भी आए हैं कि पवित्रता अगर खंडित हुई तो बाबा माफ नहीं करेगा, बाबा किसकी साइड लेगा, धर्मराज की साइड लेगा। बाबा ने कहा कि ये सफेद पेपर पर एक काला दाग है, और जैसे कि अगर अपवित्र बने तो जैसे कि पांचवी मंजिल से गिरेंगे, इतनी बड़ी चोट है इस अपवित्रता की। और जब पवित्र रहते हैं तो माया की वार से बचे रहते हैं, और अपवित्र होते हैं तो माया दुख देती है। तो जैसे बहुत सारी साकार मूल्य में पॉइंट्स आते हैं, बाबा कहीं कहीं हमको लूज छोड़ता है। जैसे कि अगर बीमार हो तो बाबा कहता है कि लेट के याद करो, अगर फ्रैक्चर हो गया है तो स्ट्रेचर पर आ जाओ और मुरली सुनो, नहीं सुन सकते तो बाबा कहता है फोन पर मुरली सुनो, किसी से वरदान सुन लो या मुरली पढ़ लो, है ना। योग के लिए भी कहता है लेटे लेटे योग करो, लेकिन इस सब्जेक्ट में बाबा ने हमको छुट्टी नहीं दी, इस सब्जेक्ट में बाबा ने बिल्कुल लूज नहीं छोड़ा है हम सबको, तो बहुत कड़ी सजा है इसकी। तो आखिर ये क्या है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ बात करेंगे। तो जैसे कि बहुत सारे जो सन्यासी है, साध्वी है, वो सब कहते हैं कि ये एक एनर्जी है, ये एक ओजस है, और वो जैसे कि जब एक ओजस पावरफुल एनर्जी जो हमारे ब्रेन तक जाती है तो हमारा ब्रेन बहुत शक्तिशाली हो जाता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनमें ये शक्ति आ जाती है, उनकी जो विचार है, उनके जो संकल्प है, उनमें बहुत शक्ति आती है। और बाबा, और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, इनकी स्पीच में भी बहुत पावर होता है। देखो बहुत सारे व्यक्ति भाषण देते हैं, परंतु किसी किसी का भाषण बहुत हमें अच्छा लगता है, हमें आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पवित्रता की शक्ति होती है, ब्रह्मचर्य की शक्ति होती है। ऐसे कई लोगों ने ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया, जैसे महात्मा गांधी के जीवन में बताते हैं 40 वर्ष की उम्र के बाद उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। और वो कहते हैं कि नीम की चटनी खाते थे क्योंकि अपनी जीभ पर उनको कंट्रोल चाहिए रहता, तो नीम की चटनी को अपने भोजन के साथ खाते थे, इतनी उन्होंने अपने पर काम किया। और जैसे कि बताते हैं कि जानवर जो होता है, जानवर को देखा होगा ना, अगर गाय है तो गाय रोज घास ही खाती है, गाय कभी उगती नहीं घास खाने से, कभी ऐसे बोलती है कि आज आइसक्रीम चाहिए या आज पनीर चाहिए, आज घास नहीं खाऊंगी मैं, या कोई भी जानवर देखो, जानवर एक ही भोजन करता है। और हम मनुष्य ही एक ऐसे हैं जो अपनी जीभ को अभी तक जीत नहीं पाए, और हमको रोज वैरायटी भोजन चाहिए। अगर सुबह की सब्जी शाम को रख देंगे तो कितने लोगों का चेहरा चेंज हो जाता है, तो हमने अभी तक अपने जीभ पर भी कंट्रोल नहीं किया। तो महात्मा गांधी के जीवन में बताते हैं कि कितना वो स्ट्रगल करते थे, और बताते हैं कि वो अपनी जो उनकी जो पत्नी थी उनको भी वो बा कहते थे, बा। तो एक बार वो कोई फंक्शन में जा रहे थे और वहां पर सबको लगा कि उनकी माता जी उनके साथ आ रही है, और जब वो फंक्शन में पहुंचे तो सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये गांधी जी के माता जी है, फिर बाद में पता चला कि ये तो इनकी वाइफ है। फिर उन्होंने कहा कि अभी कुछ सालों से ये मेरी माँ ही है, मैं इसको माँ के रूप में ही देखता हूँ। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने भी वो गृहस्थी में तो गए, विवाह किया उन्होंने, लेकिन ब्रह्मचारी का पालन किया, और अपनी वाइफ को वो पत्नी नहीं लेकिन माँ के रूप में देखते थे, और स्त्री पुरुष का भान ही उन्हें निकालना था। ऐसे ही आदि शंकराचार्य, उनके भी जीवन में अगर देखेंगे तो उन्होंने 8 साल की उम्र से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया, और उन्होंने कहा कि अगर ये विकार जो है ये मृत्यु के समान है और ये सांप के समान घातक है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही विवेकानंद ग्रस्थ आश्रम में गई नहीं, 23 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, और उन्होंने बहुत 125 साल पहले उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे 100 युवक दे दो जो ब्रह्मचर्य की पालन करेंगे तो मैं संसार में राम राज्य लेके आ जाऊंगा, है ना। और सूरदास का भी उदाहरण जैसे पता है आप लोगों को, उनकी एक बार दृष्टि खराब हो गई एक स्त्री के प्रति, तो फिर जब वो स्त्री नजदीक आके पूछी मैं क्या करूं आपके लिए, तो उन्होंने क्या कहा, उनको तुरंत ऐसा लज्जा आ गई कि मेरी दृष्टि खराब हो गई, तो उन्होंने कहा मेरी आंखें ही फोड़ दो। तो लोगों ने क्या क्या किया, तुलसीदास जी महाराष्ट्र के, उन्होंने भी कहा आध्यात्मिकता में प्रगति नहीं हो सकती अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। मीराबाई के भी जीवन में देखा ना, उसने ब्रह्मचर्य के लिए सब कुछ छोड़ दिया, लोक लाज, और कृष्ण को साजन के रूप में देखती थी वो। तो इस तरह से बहुत लोगों ने इस पे परिश्रम किया। तो ब्रह्मचारी इतना इम्पोर्टेंट है। तो बाबा भी हमको कहीं ना कहीं कोई कोई पॉइंट्स युक्ति वाली बताता है जिससे हमको ये धारण करना है। तो ये तो हो गया ब्रह्मचारी। इसके साथ बाबा पवित्रता की बात करता है। तो बाबा ने कभी एक मुरली में कहा था कि शिव बाबा को ही अपनी बहन मानो और शिव बाबा को ही अपना भाई मानो, एक दूसरे को भी बहन भाई नहीं, तो शिव बहन और शिव भाई। तो इस बात पे बाबा बात करता है। और जैसे कि हम ब्राह्मण जीवन में देखेंगे तो हमें आज की मुरली पढ़कर अपने आप को चेक करना है कि कहाँ कहाँ हमारी पवित्रता खंडित होती है। तो जैसे कि हम एक संगठन में यहाँ पे रहते हैं, कुमार कुमारियां रहते हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स करने लगते हैं एक दूसरे से, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और फिर जैसे कि आजकल तो रावण हमारे जेब में है, कहते हैं ना मोबाइल्स हमारे पास जो है, व्हाट्सएप है, फिर एक बार एक चालू हो जाता है तो एक दूसरे के बीच में बहुत सारे मैसेजेस, ईमेल्स और फेसबुक के द्वारा क्या क्या नहीं होता। तो ये स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप, इसको रोकना है कहीं ना कहीं, चेक करना है अपने आप को आज कि कहाँ मेरी पवित्रता टूटती है, कहाँ मैं रॉन्ग जा रहा हूँ, कहाँ मैं रॉन्ग जा रही हूँ। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में देखा जाए तो एक दूसरे की खूबसूरती को हम इतना नहीं देखते अभी, है ना, हम आत्मा देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे की विशेषताओं पे बहुत आकर्षित हो जाते हैं, बहन भाई पे और भाई बहनों पर। तो योगी योगी आत्माएं एक दूसरे से आकर्षित होती है। चालू तो होता है योग की बातों से और ज्ञान की बातों से, लेकिन कब माया प्रवेश कर जाए पता नहीं, बैठेंगे कि हम भी योगी आप भी योगी, पुरुषार्थी, बातें चालू, लेकिन वो कहाँ तक लेके जाएगी हमको पता नहीं। तो योगी ज्ञानी आत्माओं के बीच में जो संपर्क होता है उधर भी अपवित्रता आ सकती है। तो बाहर के लोग कितना इस चीजों में फर्म है, तो हमें भी उतना फर्म रहना चाहिए, हमें भी उतनी मर्यादाओं की लकीर में रहना चाहिए। जो श्रीमत पर चलेगा वही जीतेगा, उसकी पवित्रता भंग नहीं होगी। जैसे हमारे ओपीडी में वो जैन साध्वी आते हैं, जैन साध्वी होते हैं ना, वो आते हैं ना, तो उनका बीपी देखने के लिए वो किसी पुरुष को अलाउ नहीं करते कि वो उनका बीपी ब्लड प्रेशर चेक करे। ब्लड प्रेशर अगर चेक करना होता है तो कोई स्त्री उनका ब्लड प्रेशर चेक करे। अगर किसी पुरुष ने उनका ब्लड प्रेशर चेक कर लिया तो उनको कितने हफ्तों तक उपवास रखना पड़ता है। तो कितने फर्म है वो सब। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना है। जैसे कि कोई कोई फेवरेटिज्म होता है ना कि ये हमारी फेवरेट बहन है, ये हमारा फेवरेट भाई है, ये अगर मुरली चलाएगी तो मैं जाके सुनूंगा, ये अगर नहीं रहेंगी तो मैं नहीं जाऊंगा, इसको कोई मदद चाहिए तो मैं करूंगा। तो ये सारी क्या है, ये सारी अपवित्रता है। दूसरी बात होती है कि फेवर, किसी के ऊपर फेवर करना, किसी के ऊपर मदद करना। कोई कोई बहनें बोलती है कि ये भाई मेरा बहुत ध्यान रखता है, क्यों उससे इतना आपको लेना है हेल्प, आपको इंडिपेंडेंट बनना है ना, आपको बाबा से हेल्प लेनी है, क्यों किसी भाई पर निर्भर हो रहे हैं। कब वो भाई बहन की दृष्टि विकार में परिवर्तन हो जाएगी हमको नहीं मालूम। तो इतना ध्यान रखना है हमको इन सब चीजों का। ऐसे ही एक बार ब्रिजमोहन भाई जी ने अपने क्लास में कहा था कि किसी की विशेषता पर आकर्षित होना या कि ये भी एक अपवित्रता है। कभी कभार हम कहते हैं ना कि ये भाई जी या ये बहन जी बहुत अच्छा भाषण करते हैं या बहुत पुरुषार्थ करते हैं, हम तो आपसे बहुत प्रभावित हैं। ये कहना ही अपवित्रता है। आप कैसे प्रभावित हो सकते हैं किसी आत्मा से, बाबा बैठा है ना, प्रभावित होना है तो सिर्फ उससे प्रभावित होना है, बाप से प्रभावित होना है और किसी से भी प्रभावित नहीं होना है। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो ये हो गया ब्रह्मचर्य। और जैसे कि बाबा ने आगे कहा कि सुख शांति की जननी है पवित्रता। तो अगर सुख शांति हमारे जीवन में, मतलब हमारे पास पवित्रता है। आगे बाबा ने कहा कि आपकी अभी जो स्टेज है वो बहुत सूक्ष्म होती जा रही है और फरिश्तेपन की स्टेज आ रही है अभी, और पाप समान की स्टेज के समीप आ रहे हो आप, तो आपको सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं लेकिन ब्रह्माचार्य, ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम चलने वाले, इनको कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। और बाबा ने एक शब्द यूज किया शिवाचार्य, है ना। ब्रह्मचार्य तो हम सब कहते हैं कि ब्रह्मचार्य मतलब ब्रह्मा बाबा ने जो किया उसके कदम पे कदम हमें भी वैसे ही चलना है, जैसे निश्चय बुद्धि थे, जैसे कि निस्वार्थ सेवा, निष्काम भाव, सबको प्यार करने वाले, एकाग्रता की शक्ति, बेफिक्र बादशाह। तो जो भी बाबा ने किया वो सब हमें करना है, लेकिन बाबा ने कहा शिवाचार्य। शिवाचार्य मतलब शिव के समान। तो एक है ब्रह्माचार्य, एक है शिवाचार्य। तो जैसे शिव बाबा करता है वैसे करना है। तो हम क्लास में आ रहे थे, एक घंटा पहले ही हमें किसी ने पूछा कि व्हाट इज शिवाचार्य। तो हमने सोचा शिवाचार्य मतलब जो शिव बाबा करता है वो हमें करना है। तो हमने कुछ पॉइंट्स लिखे कि बाबा की लहरें चलती है ना मुरली में, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, बहुत कंफ्यूजन होता है ना हम बच्चों को, आज ये बोला कल ये बोल रहा है कि नहीं। तो वैसे हमारी भी लहरें चले शिवाचार्य की तरफ। बाबा ड्रामा को अपनी ढाल यूज करता है बहुत बार, कुछ भी पूछो तो ड्रामा, है ना, उत्तर में हमको मिलता है ड्रामा। तो हम भी कुछ ऐसे करें, बाबा को परमधाम अच्छा लगता है इसलिए परमधाम में ही रहता है, तो हम भी परमधाम में ही रहे। बाबा सबसे प्यार करता है, बाबा एक से प्यार नहीं करता, बाबा के कोई फेवरेट्स नहीं है, बाबा हम सब बच्चों को प्यार करता है। तो उसी तरह से हमें भी सबको प्यार करना है, तो शिवाचार्य। फिर बाबा ने आगे कहा कि आप लोग सुख की शैया पर सोए हुए हो, तो विष्णु को याद किया बाबा ने कि वो आपका गायन है, है ना, कि वो शेष शैया नहीं है परंतु सुख की शैया है, और विकार आपके छत्र छाया बन गए। तो एक तो हमने विकारों पर जीत पाई है इसलिए हम वो नाग की जो शैया है उस पर हम सो रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे थे कि ये विकार कैसे छत्र छाया बन गए, और बाबा ने आगे कहा कि दुश्मन भी सेवाधारी बन जाएंगे, तो विकार हमारे छत्र छाया कैसे बन सकते है? इस पे किसी ने विचार किया कि विकार हमारे छत्र, विकार हमको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? हम सोच रहे थे इसके बारे में। तो जैसे कि अगर गुस्सा है तो गुस्सा हमको कैसे प्रोटेक्ट करेगा? तो कहीं ना कहीं अगर हम पुरुषार्थ में ले ले अपने, अगर पुरुषार्थ में दृढ़ता, दृढ़ता से कि मुझे करना ही है, एक जिद होती है ना, ये भी एक प्रकार का गुस्सा है, अगर वो हमारे पास है तो हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे। अगर हमने कोई गलती कर दी तो अपने आप को, बाबा कहता है ना पनिशमेंट दो, अपने आप को सजा दो, तो गुस्से में ये कर सकते हैं। तो ये हमारी छत्र छाया बन के चलेंगे। अगर मोह है तो सारा मोह किसके पास? बाबा के पास, है ना। अगर ग्रीड है, कुछ लेने की इच्छा है, लोभ है, तो सब कुछ बाबा से लेना है, गुणों को लेना है, शक्तियों को लेना है, सारी प्राप्तियां सिर्फ बाबा से। तो इस तरह से विकार हमारे छत्र छाया बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा जहां सुख शांति है वहां पर आत्मा कैसी रहेगी? हर्षित, हर्षित मुख रहेगी। फिर आगे बाबा ने कहा कि ये जो सुख शांति की अनुभूति आपको होती है, अगर आप में पवित्रता है तो दूसरों को भी वो अनुभूति होनी चाहिए। अगर सुख शांति की अनुभूति दूसरों को नहीं हो रही है तो अपने आप को चेक करो कि ये क्यों हो रहा है, कि मैंने तो पवित्रता धारण की, मुझे सुख शांति की अनुभूति हो रही है लेकिन दूसरों तक नहीं पहुंच रही। इसका मतलब है बाबा ने क्या कहा कि कोई ना कोई किसी से, किसी की कमजोरी धारण की है, किसी का व्यर्थ अपने मन में धारण करके रखा है। अगर किसी की कमजोरी और व्यर्थ हमारे मन में है तो दूसरों तक हमारी सुख शांति नहीं पहुंचेंगी। तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में हम देखते हैं कि हम लोगों की कमजोरियां बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, है ना, हमको दिखती नहीं विशेषता है और कमजोरियां ही दिखती है हम लोगों को। तो आज हमें आपको एक एक्टिविटी करानी है। अभी आप सब जो बैठे हैं दो दो के पेयर्स में बैठेंगे और एक दूसरे को देखते हुए बैठेंगे, तो बैठ जाए, दो 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 ऐसे ही मुड़ जाओ बस। और क्या करना है हम बताएंगे आपको, दो मिनट के लिए करेंगे। और जो आपके पार्टनर हैं, राहुल भाई, जो आपके पार्टनर हैं, अब उनकी ब्रुकुटी में देखना है, जो हम एक दूसरे के बाजू में बैठे सब सेवा में यहाँ पर आए हैं और एक दूसरे को जानते हैं, है ना। तो अभी 2 मिनट कुछ म्यूजिक बजेगा और आपको सामने वाले की विशेषता को देखना है कि इस आत्मा को मैं थोड़े दिन से तो जानती हूँ, इस आत्मा में ऐसी कौन सी 3 विशेषता है जो मुझे दिख रही है। तो 2 मिनट का समय, तो दोनों एक दूसरे की विशेषता देखेंगे और फिर कुछ शेयर करेंगे। ओम शांति। अभी कोई शेयर करना चाहेगा कि आपने अपने पार्टनर में क्या विशेषता देखी? वहां से ही बोलिए, हम रिपीट कर लेंगे। उपकार की भावना, परोपकार की भावना, अलर्ट, अलर्ट बना, और हाँ, सहजता। और आपने क्या देखा इनमें? महान आत्मा है। और बस एक ही दिखा। अच्छा, और कोई शेयर करेगा? हाँ जी, हर्षित मुक्ता, सहयोग की भावना और सरलता। और आपने कुछ नहीं दिखा? क्या दिखा वो बताना है, बोल। हाँ, आत्मा, उस आत्मा में क्या विशेषता देखी हमने? ठीक है, और कोई? हाँ, अगर आत्मा देखते हैं तो किसी में खराबी नहीं है, सब अच्छे ही है। देह जब देखते हैं तब खराबी नजर आती है। मानशान। जी बोलिए। प्रेम और आनंद, सुख। अच्छा, और हाँ, जो स्नेहमूर्त, सहयोग, संतुष्टता। भाइयों की तरफ से कमलेश भाई, यज्ञ रक्षक, सिक्योरिटी में निर्भयता, दूसरों को प्रैक्टिकल जीवन से सिखाने वाले। और आपने सेम दिखा? हाँ जी, पावरफुल। सौभाग्यशाली। श्रेष्ठ आत्मा। पीछे से कोई? हाँ जी, सहनशीलता, संतुष्टता और शीतलता। अरे वाह, बहनों के गुण भी आ गए भाइयों में। हाँ जी, हाँ जी, कल पहले हम दोनों यही जगह पे मिले थे, ये फील हुआ। अच्छा, और वहां से? हाँ जी, शांत स्वरूप। बहुत प्रेम है। प्रेम के वाइब्रेशंस। बहुत अच्छा। हाँ जी, सबको संतुष्ट करना क्योंकि टोली बांटते माता जी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इसलिए करवाई क्योंकि बाबा ने यहाँ पर कहा कि हम लोगों की कमजोरियों को धारण करके बैठ जाते है ना, लेकिन अगर हम चाहे तो हम विशेषताओं को भी देख सकते हैं, लेकिन एक एफर्ट की जरूरत है हमारे साइड से। तो जो आज किया आपने, यही हमेशा करना है कि विशेषताओं का चश्मा पहन के रखना है और दूसरों की विशेषताओं को ही देखना है। हम सेवा में आए हैं ना, तो ऐसे ही अचानक से किसी भी आत्मा को देखना और सोचना इसमें क्या क्या विशेषता है, तो देखो अपनी स्थिति भी बढ़ जाती है, ऊंची हो जाती है और सामने वाले को भी अच्छे वाइब्रेशंस जाते हैं, है ना। तो बाबा ने ये चीजें कही। और हम देखते हैं ब्राह्मण परिवार में हम लोगों को अप्रिशिएट बहुत कम करते है ना, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो कम वो करते, लेकिन अगर कोई बुरा कर रहा है, कुछ कमजोरी होगी तो उसको तुरंत फैला देते, 10 लोगों को बताएंगे उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। एंड बाबा ने कभी कभी कहा है मुरली में कि अगर किसी की कमजोरी आप देखते हो तो समझो कि वो कमजोरी मेरी है, और हम अपनी कमजोरी कभी दूसरों को नहीं बताते, हम अपनी कमजोरी फैलाते कभी नहीं फैलाते, तो समझो कि वो ब्राह्मण परिवार की आत्मा मेरा भाई या मेरी बहन है, तो मैं क्यों उसकी कमजोरी इस परिवार में फैलाऊं, क्यों वो कचरा हम यज्ञ में डाल के इस यज्ञ को अशुद्ध करते, नहीं करना है हमको ये बात, है ना। तो दूसरों की कमजोरियों को अगर देख रहे भी हो तो संभालो, ऐसे तो देखना ही नहीं है, उसको धारण ही नहीं करना है, नहीं तो योग में भी वही आत्मा याद आती है हमें, है ना। किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति घृणा, ये सब हमने अपने मन में बिठा के रखा है, तो ये सारी चीजों को छोड़ते जाना है ना। तो बाबा ने फिर आगे कहा कि ये तो बात हो गई दूसरों की, कैसे दूसरों को होगा। फिर बाबा कहते हैं कि पवित्रता की शक्ति इतनी महान है कि प्रकृति भी परिवर्तन हो जाती है, पहले व्यक्ति परिवर्तन होता है और फिर प्रकृति परिवर्तन होता है। जैसे कि बताया ना, यौगिक खेती जो है हमारी, हमारे प्योरिटी के वाइब्रेशन से वो यौगिक खेती हो रही है, वहां पे कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वो लोग यूज नहीं करते, और ये प्योरिटी के वाइब्रेशन से ही वो खेती को उगा रहे हैं। ऐसे ही जो डॉक्टर मोटो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था पानी पर, है ना, सूरज भाई जी हमेशा अपने क्लास में कहते हैं कि पानी को चार्ज करो अपने प्योरिटी के वाइब्रेशन से और फिर पियो, तो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, एक पानी के ग्लास के ऊपर प्योरिटी के वाइब्रेशन डाले गए, पॉजिटिव वाइब्रेशन डाले गए, और दूसरे ग्लास पर नेगेटिव वाइब्रेशन डाले गए, और फिर दोनों के वाटर मॉलिक्यूल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो एक जिसमें प्योरिटी के वाइब्रेशंस थे या पॉजिटिव वाइब्रेशन थे उसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत था और इसमें बहुत गंदा था। तो कैसे हमारे प्योरिटी के वाइब्रेशन कैसे परिवर्तन करते, ऐसे ही बीमार होता है कोई तो क्या कहते हैं कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये सोचो, पानी को चार्ज करो, पियो, क्योंकि हमारा 70% बॉडी अंदर से वाटर है, तो अगर हम पवित्रता का समान धारण करें तो कैसे वो वाइब्रेशंस हमारे बॉडी में फैलते। ऐसे ही हमने अपने जीवन में देखा, जब हम ज्ञान में आए तो बहुत विरोध था सबकी तरफ से, है ना, और जैसे ही आते हैं तो पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ती है फैमिली को, और फैमिली मैरिज के लिए फोर्स करती है। तो हमने भी सूरज भाई जी की क्लास में सुनते थे कि सोचो मैं पवित्रता की देवी हूँ और उनको वो वाइब्रेशंस दो, तो यही स्वमान की प्रैक्टिस बार बार की और ऑटोमेटिकली देखा गया कि परिवार के जो बुद्धि थी सबकी परिवर्तन हो गई अपने आप, पहले विरोध कर रहे थे अब सपोर्ट करते, तो ये है कैसे परिवर्तन होता है। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा ने आपको पवित्रता की शक्ति के बारे में बताया संकल्पों में, अभी कभी और बाबा बताएंगे हमको वाचा में और कर्मणा में, संबंध में और संपर्क में। फिर बाबा ने आगे कहा 16 कला और 14 कला, क्या बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है तो सूर्यवंशी बनना है, और 14 कला जो है वो चंद्रवंशी है, ये सतो प्रधान है, ये सतो है। तो बाबा कहते कभी कभी आप सुख की शैया पे सोते हो, कभी कभार उलझन की शैया पे सोते हो, कभी कभार आप बिंदी का तिलक लगाते हो, कभी कभार क्यू क्या क्वेश्चन का तिलक लगाते हो, तो आपको तीन बिंदियों का तिलक लगाना है, है ना। बाबा कहते हैं तिलक लगाना तो आता है आपको, लेकिन आपका अटेंशन रूपी हाथ हिलता है तो वो नहीं करना है। तो ये बाबा ने कहा कि लक्ष्य महान रखो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। फिर आगे बाबा ने दो पार्टियों से मुलाकात की। पहली पार्टी से बाबा ने कहा कि आप कौन हो, रूहे गुलाब, है ना। गुलाब बहुत, बाबा ने कहा, बहुत पॉपुलर होता है, रूहानी गुलाब हो आप, और अपनी रूहानियत की खुशबू चारों ओर फैलानी है। और बाबा ने इसकी विधि क्या बताई कि आत्मा देखना है और आत्मा जो सुप्रीम है उससे रूह रिहान करते हो, रूह को देखते हो और रूहों के मालिक से रूह रिहान करते हो, इसीलिए रूहानियत की खुशबू चारों ओर फैलाते हो। जैसे माताजी ने कहा ना कि जब हमने आत्मा देखा तो हमको सब अच्छा ही अच्छा दिख रहा है, और जब हम आत्मा नहीं देखते, देह देखते, तो सब कुछ खराब नजर आता है। तो यहाँ बाबा गुलाब के बारे में कह रहा है। तो गुलाब, बाबा हमेशा गुलाब और दूसरा है कमल, कमल और रूहा गुलाब के बारे में बहुत बार बोलता है। जब गुलाब के बारे कमल के बारे में कहता है तो गृहस्थी वालों के बारे में बात करता है। एक मुरली में बाबा ने कहा कि गुलाब ज्यादा बड़ा या कमल, कमल हाँ पवित्रता है तो सब आएगा, और गुलाब गुलाब बाद में है, कांटों में भी खिलता है, तो अपनी अपनी विशेषता है। तो उस मुरली में बाबा ने उत्तर दिया था कि गुलाब का फूल जो है वो देवताओं पर अर्पण होता है, लेकिन कमल का फूल नहीं। बट सुबह में हमने किसी से पूछा तो किसी ने बताया कि कमल के ऊपर ही देवताएं खड़े होते हैं, है ना। और किसी किसी के हाथ में तो कमल का फूल होता है, गुलाब का फूल नहीं होता है। हाँ, कमल फूल देते हैं, देवियों के हाथ में कमल फूल ही देते हैं। तो इसी तरह से रूहानियत फैलाने, तो रूहानियत भी हम कैसे फैलाते हैं, हम जैसे यहाँ पे सेवा के लिए आए फिर अपने अपने घर पे वापस जाएंगे, तो कैसे आप रूहानियत फैलाओगे, तो अपने कैसे, अपने को आत्मा देखना है, दूसरों को आत्मा देखना है ना। और कितने वेल मैनर्ड है हम, कैसे हम चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते, सब हमको देखते हैं। नहीं तो कहेंगे ये ब्रह्मा कुमारी है और ये ऐसे करते, तो वो डिससर्विस नहीं करनी है। फिर बाबा दूसरी पार्टी दीदी जी से विदा ले रहे। दीदी जी दिल्ली के कोई मेले में जा रहे हैं, तो बाबा ने उनसे कहा कि आप हीरो पार्टधारी हो और हीरो पार्ट प्ले कर रही हो और थोड़े समय में दूसरों को भाषणा दे रही हो। और बाबा ने उनसे कहा कि आत्मा उड़ता पंछी बन गई है, जैसे प्लेन में आना जाना कितना इजी हो गया है, वैसे आत्मा भी उड़ता पंछी बनकर यहाँ से वहां जाती है। फिर बाबा ने कहा कि दिल्ली से ही आवाज निकलेगा, सारे माइक दिल्ली में ही पहुंचेंगे, और फिर गवर्नमेंट से जब आवाज निकलेगा तब समाप्ति होगी, और भारत के जो पॉलिटिशियंस हैं, बाबा ने कहा, वो भी जागेंगे, है ना। तो अंत में सिर्फ इतना कहना है कि संपूर्ण पवित्रता क्या है, कंप्लीट प्योरिटी की बात की आज बाबा ने। तो ये तो हमने कहा ये ब्रह्मचर्य है, ये अपवित्रता है, तो संपूर्ण पवित्रता क्या है, उसके क्या पॉइंट्स होंगे, जो आत्मा संपूर्ण पवित्र है उसके क्या पॉइंट्स होंगे। संकल्प में भी अपवित्रता नहीं आएगी, और स्वप्न में भी नहीं आएंगी। हाँ, ये भी एक पॉइंट हमने सोचा था कि बाबा ने जब कहा कि कौन सा ऐसा यंत्र है जो पता चलेगा कि हमें संपूर्ण पवित्रता है, तो बाबा ने उत्तर दिया सुख शांति। लेकिन स्वप्न भी एक ऐसे है जिसमें पता चलता है कि आत्मा का क्या, पूरे दिन का दिनचर्या कैसा है। जैसे कि स्वप्न जो होता है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड होता है, और हम पूरा दिन कॉन्शियस माइंड में रहते हैं, तो रात में वो बैरियर खुल जाता है। कॉन्शियस माइंड को पता है कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं पवित्र हूँ, और मैं मुरली सुनती हूँ, मैं योग करती हूँ। लेकिन जब हम सो जाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिव होता है, उसको नहीं पता होता है कि मैं क्या हूँ, और कुछ भी निकल आता है स्वप्न में। तो स्वप्न भी एक इंस्ट्रूमेंट है या यंत्र है पता चलने के लिए कि हम कितनी प्योरिटी को हमने धारण किया है, ठीक है। और ऐसी आत्माएं दिनचर्या में बहुत एक्यूरेट रहेगी, संपूर्ण पवित्रता है ना, और उनमें गुणों की धारणा होगी और ज्ञान स्वरूप होगी, दूसरों को उमंग उत्साह मिलेगा उनसे, दूसरों को प्रेरणाएं मिलेगी, सबकी माननीय होगी वो, और दूसरे उनके जीवन को देख के परिवर्तन होंगे। बहुत त्यागी होगी ऐसी आत्माएं, बहुत तपस्वी होंगी ऐसी आत्माएं, तो ऐसा उनका जीवन होगा। नेगेटिविटी नहीं होगी उनमें, व्यर्थ नहीं होगा उनमें। तो ये है संपूर्ण पवित्रता। अब ये एक क्वेश्चन हमारे मन में आया था कि देवताएं संपूर्ण पवित्र है। संपूर्ण पवित्रता की स्टेज कब है हमारी? तो जब देवता बन गए, इस सृष्टि पर आ गए, तो संपूर्ण पवित्रता है। हाँ, सोचने की बात है कि देखो, जब बाबा देवताओं के बारे में कहता है तो संपूर्ण निर्विकारी वर्ड यूज करता है। संपूर्ण निर्विकारी और 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। तो जैसे कहते हैं परमधाम की जो हमारी स्टेज है, जैसे भाई जी ने कहा, वो संपूर्ण पवित्रता की स्टेज है। जैसे ही आत्मा परमधाम से नीचे उतरती है, एवरी सेकेंड उसकी पवित्रता कम होते जाती है। तो जब हम संपूर्ण पवित्रता की बात कर रहे हैं तो परमधाम की स्टेज की बात कर रहे हैं हम। फिर बाबा ने आगे 5 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था कि अगर आप जस्टिस हो तो अपने संकल्प और दूसरों के संकल्पों को कैसे जज कर सकोगे, क्या धारणाओं के आधार पर। तो जिनकी बुद्धि का काटा क्लियर होगा, एकाग्र होगा, जिनमें व्यर्थ नहीं होगा, जिनमें लव और लॉ का बैलेंस होगा और लव और पावर का बैलेंस होगा, ऐसी आत्माएं जज कर पाएंगी। दूसरा प्रश्न था कि लौकिक जज अगर कोई जजमेंट लेते और आप स्पिरिचुअल जजेस जो जजमेंट, आपकी जवाबदारी क्या है। तो वो अगर कोई जजमेंट रॉन्ग ले लेते हैं तो सामने वाली आत्मा का एक जन्म खराब हो सकता है, या तो फिर उसका कोई समय व्यर्थ जा सकता है। लेकिन हमने अगर किसी को परखने में कुछ गलती कर दी तो उसकी तकदीर, उसकी अन्य जन्मों की तकदीर कोई लकीर लगा देंगे हम। फिर बाबा ने आगे कहा कि आपका बुद्धि का काटा एकाग्र कैसे रह सकता है। तो कैसे रह सकता है, बाबा ने कहा, जब कौन सी स्टेज हो, इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज होगी तब। फिर आगे बाबा ने पूछा, इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज के लिए क्या चाहिए? युक्ति युक्त संपन्न, नॉलेज में संपन्न, सक्सेसफुल। तो ये जब होंगे, तो जब संपूर्ण स्टेज है, फरिश्तेपन की स्टेज, कर्मातीत स्टेज होंगी। और लास्ट में बाबा ने 4 संबंधों के बारे में कहा, बाबा से 4 संबंध और उससे कौन से 4 स्लोगन और धारणाएं जोड़ना है। तो बाप, टीचर, सदगुरु और साजन। बाप के संबंध में फरमान बरदार, तो संशोस फादर, सपूत बनकर सबूत देना है। टीचर के संबंध में ईमानदार, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। और फिर गुरु, गुरु के संबंध में आज्ञाकारी, जहां भी बिठाओ, जहां भी सुलाओ, जहां भी खिलाओ। और फिर लास्ट है साजन, साजन के संबंध में वफादार, तुम इसे खाओ, तुम इसे पियो, तुम इसे सो। तो ये आज की पूरी मुरली थी। और बाबा ने जो वरदान भी था आज का, क्या था कि कोई कोई बच्चे जो होते हैं वो बीज के ओर आकर्षित नहीं होते, बीज को भूल जाते हैं और ताल तालियों की ओर, हाँ, बीज शोभनिक नहीं होता, उसका रंग रूप इतना शोभनिक नहीं है और ताल तालियों। तो ये भी देखो एक प्योरिटी से रिलेटेड पॉइंट है कि हम बाबा को भूल जाते और दूसरी आत्माओं की तरफ आकर्षित हो जाते हम, है ना। तो कैसी पूरी मुरली कनेक्टेड थी, ठीक है। तो इस पे और चिंतन कर सकते हैं आप, अपनी चेकिंग खुद करना कि कहाँ कहाँ हमारी प्योरिटी कम हो रही है। अगर आप हमसे पूछेंगे कि पुरुषार्थ में आप क्या करते हो, तो हम अपनी प्योरिटी पर ही काम करते हैं। जहाँ हमने प्योरिटी पर काम किया तो दूसरे गुण अपने आप आ जाते हैं। और प्योरिटी सिर्फ ग्रॉस लेवल पर नहीं बात कर रहे हम ब्रह्मचर्य की, लेकिन अपने संकल्पों में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, हम कैसे बात कर रहे किसी से, हम कैसे व्यवहार कर रहे, किसी की गलतियां तो मन में नहीं रख रहे, इन सब चीजों पर ध्यान देना है, तभी संपूर्ण पवित्रता आएगी। और मजा भी आएगा फिर, जब योग में बैठोगे ना तो उतना आनंद आएगा, उतना मजा भी आएगा जब हमारी संपूर्ण प्योरिटी की स्टेज होगी। तो ओम शांति।